श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 4। अनन्य चेताः सततम् यूमां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपार्था नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी प्रवृत्त भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ध्यान देना होगा कि इस श्लोक के अनुसार एक बात तो ये है कि इसमें अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति का वर्णन है, और पिछले श्लोक में योग मिश्रित भक्ति का वर्णन था। और साथ साथ एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त भगवान को प्राप्त नहीं होता है, अपितु भगवान स्वयं ही भक्त को प्राप्त करवा देते हैं स्वयं को। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान भक्त से विरह का को सहन नहीं कर पाते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। निष्काम अर्थात उनकी कामना यही होती है कि भगवान से जो उनका शाश्वत संबंध है उसको जागृत करें। ना तो वो मुक्ति चाहते हैं ना भक्ति चाहते हैं। पिछले श्लोकों में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, यानी कि सातवें अध्याय को रेफर कर रहे हैं। आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। यानी भक्त इन चीजों का आश्रय कतई नहीं लेता है, सीधे भगवान का स्मरण करता है। जैसा कि अनन्य चेताः शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता, अर्थात कृष्ण और कृष्ण से अपने संबंध को जागृत करने की लालसा ही शुद्ध भक्ति समझी जाएगी। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इन किसी भी वस्तुओं से आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चा सुख तो भगवान कृष्ण के प्रति अहेतु की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये चीज चैतन्य चरितामृत में बताई गई है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं, यानी जो भोग चाहते हैं या अपनी मुक्ति भी चाहते हैं, वो भी अपने लिए कुछ चाहते हैं, लेकिन भगवान का भक्त केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए दोबारा यही इच्छा रखता है। एक ओर जहाँ ज्ञान योगी, कर्मयोगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भगवान प्राप्त होते हैं, अर्थात अपनी कृपा से भगवान स्वयं ही भक्त के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं। अपने साधन से भगवान को पाता है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसलिए सुलभ तस्य हम सुलभ पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, अपने जो भक्त प्रेम भगवान से इस प्रकार का प्रेम करते हैं तो भगवान स्वयं ही अपने आप को उनके हृदय में प्रकट कर देते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं तथा यथा राम तथा नृसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। यानी कि वस्तुतः बार बार भगवान के एक विशिष्ट रूप में ही मन को आविष्ट करना होता है। ऐसे तो हम भगवान के विभिन्न चरित्रों की लीलाओं, भगवान के विभिन्न रूपों के लीलाओं को सुनते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके भक्त का जो आवेश है मन का, वो भगवान के एक विशिष्ट रूप के प्रति ही स्थिर हो जाता है। जैसे हनुमान जी का भगवान श्री राम के प्रति है, प्रहलाद महाराज का नरसिंह देव के प्रति है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की सीधा सहयोग नहीं है अन्य योग पद्धतियों में, लेकिन भक्ति योग में भगवान स्वयं ही मदद करते हैं भक्त की और उनको सिद्ध करने के लिए, उनकी सिद्ध करने की जो सफलता है वो भगवान स्वयं देते हैं। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। सरल क्यों है? क्योंकि ये जीवात्मा की सहज स्थिति है, करने में बहुत आसान है। श्रवण कीर्तन तो हम दिन भर करते ही हैं, तो इसलिए कोई बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है भगवान का श्रवण कीर्तन करना या उनकी पूजा करना, जो भक्तों के माध्यम से हम सीख सकते हैं। और शुद्ध इसलिए है क्योंकि यही जीवात्मा की वास्तविक स्थिति है, कृष्ण के चरणों में प्रेममय सेवा करना। और सुगम क्योंकि सभी लोग किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, किसी भी अवस्था में हों, उन सब लोग कर सकते हैं। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जब से किया जा सकता है, और इस बात को शिला यमराज भी बोलते हैं, तन्नाम ग्रहणादि भी। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय, ये तो भजन्ति माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। कि भगवान सबकी तरफ कृपालु हैं, लेकिन जो लोग प्रेम में सेवा करते हैं उनके प्रति भगवान अधिक कृपाल करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, यमे वैश्य वृणते तेन लभ्यस तस्येष आत्म विवृणते तनम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। अर्थात जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाली क्रियाओं में लगा है तो भगवान स्वयं ही अपना रूप उनके हृदय में प्रकट करते हैं। जैसे कि भागवत में हम पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी जब स्वयं भगवान को देखने का प्रयास कर रहे तो नहीं देख पाए, लेकिन जब भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो अपने आप ही अपने स्वरूप को भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट कर दिया। तथा गीता में भी कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। कैसे भक्त को? जो नित्य युक्त है, जो लगातार कृष्ण की सेवा में लगा रहता है अन्य अन्य रूपों से, अलग अलग रूप से। यानी भक्त कभी श्रवण करते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी स्मरण करते हैं, कभी पूजन करते हैं, ऐसे अलग अलग तरीकों से लगातार कृष्ण की सेवा में लगे रहना होता है, इसी को नित्य युक्तता बोला जाता है। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश तथा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। अर्थात वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मैंने स्नान नहीं किया तो अब मैं कृष्ण का स्मरण नहीं करूं, स्नान करने के बाद ही करूं, ये सब नहीं है। कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का श्रवण हर परिस्थिति में करते रहना चाहिए, और यही सच्चे भक्त का लक्षण है। ये हमारा एस्पिरेशन है, लालसा है कि ऐसी स्थिति को हम प्राप्त करें। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, यानी कि देश काल का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों को कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? महाप्रभु ने बोला कि मोरा वन वृंदावन, अगर भगवान के प्रति प्रेम है और हर क्रिया भगवान की प्रेममय सेवा में निहित है तो ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप से वृंदावन में रह रहा है, क्योंकि वृंदावन एक चेतना का स्तर है जिसमें हर क्रिया, हर विचार, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सेवा में नियोजित रहता है। जैसा कि सततम तथा नित्यशय शब्द सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। इस बात को ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेदेश दुर्लभ दुर्लभम आत्म भक्तो। तो आत्म भक्त का अर्थ यही है कि जो अनन्य भाव से कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं, अपना स्मरण का विषय, अपना श्रवण का विषय, कीर्तन का विषय वो परिवर्तित नहीं करते हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। ये भी समझ में आना चाहिए कि भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त अर्जुन के बीच में बात हो रही है तो निश्चित रूप से बात भक्ति योग के लिए हो रही है। यद्यपि भगवान अन्य योग पद्धतियों को बताते हैं, लेकिन अंततो गत्वा संस्तुति वो भक्ति योग की ही करते हैं। गीता सामान्यतः भक्ति योगी प्राच प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, वात्सल्य भक्त
जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, इसको हमें अपने से सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या संबंध है। भक्ति के 9 स्तर होते हैं और लास्ट स्तर होता है प्रेम का। प्रेम से पहले का स्तर होता है भाव का। तो भाव के स्तर पर व्यक्ति को अपने आप ही समझ में आ जाता है कि उसका क्या संबंध है भगवान से। उससे पहले तक भगवान की भक्ति करने में जो रुचि है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन भाव के स्तर पर ही ये मालूम चलता है कि व्यक्ति का क्या संबंध है। तो इसलिए इसको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप ही बात समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्ण मंत्र के उत्तरोत्तर जप से व्यक्ति एक दिन इतना शुद्ध हो जाता है कि शुद्ध मन के कारण हमेशा उसका मन भगवान की तरफ ही दौड़ता है। तो जैसे मन भगवान में लगा हुआ है तो भगवान का मन भी ऐसे भक्त के चरणों में तो नहीं, क्षमा कीजिएगा, भगवान का मन भी ऐसे व्यक्ति के प्रति लगा रहता है। तो ये दोनों के बीच में बड़ा प्रेम में संबंध होता है, इस कारण से भक्त बड़ी आसानी से सुलभ हो जाते हैं भक्त। हरे कृष्ण।